रात के करीब 2 के आसपास आलिया ने अनुज के बताए हुए प्लान के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। उसने पहले अपने साथ जेल में रहने वाले कैदियों के साथ लड़ाई की और फिर बाद में पेट्रोल छिड़क कर वहां आग लगा दी। उसने खुद की बॉडी पर पेट्रोल के बजाय पानी फेंका था। आग लगने पर जब अनुज के ही खरीदे हुए कांस्टेबल ने जेल का दरवाजा खोला तो आलिया भाग गई थी। उसने जेल का दरवाजा वापस बंद कर दिया ताकि अंदर रहने वाले सारे कैदी मर जाएं और इसे एक हादसे का नाम दे दिया जाए। वैसे भी जेल में इस तरह के हादसे होते रहते थे। आलिया जेल से बाहर भाग चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो मेन गेट के पास पहुंची, आगे शिवम और प्रतिज्ञा खड़े थे। उनके साथ पूरी पुलिस फोर्स और रुद्राक्ष भी था, जिन्हें देखकर आलिया हैरान रह गई। उसकी नजर सबसे पहले रुद्राक्ष के ऊपर गई। वो रोते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत कीजिए भाई, मुझे जाने दीजिए। आपको नहीं पता अंदर रहना कितना मुश्किल होता है। मुझे पता करना भी नहीं है आलिया, क्योंकि मैंने किसी को मरने पर मजबूर नहीं किया है। तुम्हारी असली जगह वही है और तुम्हें वहीं पर जाना होगा, रुद्राक्ष ने सर्द आवाज में कहा। आलिया की मदद करने के लिए वो कांस्टेबल जल्दी से बाहर आया और इस चक्कर में वो भी पकड़ा जा चुका था। आलिया और उस कांस्टेबल को अलग जेल में भेज दिया गया और उन पर एक और मुकदमा लागू हो गया था। आलिया जाते हुए बहुत रो रही थी और रुद्राक्ष से बार बार मदद मांग रही थी, लेकिन रुद्राक्ष ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। वो मन ही मन बोला, कभी सोचा नहीं था कि जिस बहन को मैंने इतने प्यार से बड़ा किया था और हर बुराई से दूर रखने की कोशिश की थी, उसी को खुद में इतनी तकलीफ दे रहा हूँ। अगर तुम्हारी वजह से रिशानी ने खुद की जान नहीं ली होती तो शायद फिर भी मैं तुम्हें माफ कर देता, पर तुम माफी के लायक नहीं हो। खुराना मेंशन में रहने वाला कोई भी शख्स माफी के लायक नहीं है। रुद्राक्ष अपने ख्यालों में खोया था, तभी प्रतिज्ञा ने कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर खुराना, आपकी वजह से एक बहुत बड़े रैकेट तक पहुंच सकते हैं हम। रुद्राक्ष ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। उसकी आंखों में दर्द देखकर प्रतिज्ञा ने कहा, ईशानी भी बहुत इमोशनल है, उसने किसी का बुरा नहीं किया है तो उसके साथ भी सब अच्छा ही होगा और वो हमें मिल जाएगी। ईशानी इस वक्त पाकिस्तान में है, रुद्राक्ष ने बताया, और फिर विक्रांत ने उसे जिस तरह से ईशानी की फोटो दिखाकर ब्लैकमेल किया था उसके बारे में रुद्राक्ष ने पूरी कहानी शिवम और प्रतिज्ञा को बता दी थी। सब कुछ सुनाने के बाद शिवम ने कहा, अगर ईशानी इन हालातों में है तो वो सच में एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। गलती से भी अगर उसे पाकिस्तान आर्मी ने पकड़ लिया तो हमारे लिए उसे जल्दी से वापस पाना मुश्किल होगा। विक्रांत खुराना भी जेल में है और तुम जाकर उनसे डील कर लो, यही सही रहेगा। चाहे तुम उन्हें चालाकी से हैंडल करो, उनकी बात ना भी मानो, लेकिन फिलहाल ईशानी को इंडिया लाना जरूरी है। नहीं, कोई उसे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मुझे ब्लैकमेल करना है। ईशानी उनका ट्रम्प कार्ड है, जिसे वो मुझसे भी अच्छे से संभाल कर रखेंगे, रुद्राक्ष ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा है, पर ये ईशानी के लिए खतरनाक साबित ना हो जाए। बाकी किसी भी हेल्प की जरूरत पड़े तो बता देना, फिलहाल हमें दिव्या खुराना तक पहुंचना है, प्रतिज्ञा ने कहा और फिर शिवम के साथ वहां से चली गई। पुलिस फोर्स आलिया को पकड़ने के बाद एयरपोर्ट पर दिव्या को पकड़ने के लिए गई थी। उनके बीच हुई रिकॉर्डिंग को पहले ही रुद्राक्ष ने शिवम और प्रतिज्ञा को भेज दिया था, उसी के आधार पर दिव्या को भी पकड़ लिया गया था। खुराना फैमिली में अब माया सिर्फ अकेली बची थी, जो जेल से बाहर थी। रुद्राक्ष उससे बात करने के लिए आलिया के घर पर गया। संजना सोने जा चुकी थी, जबकि माया को अभी भी परेशानी में नींद नहीं आई थी। दिव्या भी घर पर नहीं आई थी तो वो उसके लिए परेशान हो रही थी। माया बार बार दिव्या को कॉल कर रही थी। उसके कॉल रिसीव ना करने पर वो बड़बड़ाकर बोली, पता नहीं कहाँ रह गई, घर का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है और इसे बाहर रहना है। रुद्राक्ष अंदर आते हुए बोला, किसी का इंतजार मत कीजिए, कोई यहाँ नहीं आने वाला है। विक्रांत खुराना, दिव्या खुराना और आलिया खुराना तीनों ही सलाखों के पीछे हैं। मतलब क्या है आपके कहने का, माया ने हैरान होकर पूछा। सीधा सा मतलब यही है कि दिव्या खुराना ने आलिया को जेल से भगाने की कोशिश की थी, उस अपराध में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आलिया पहले से ही जेल में थी, रुद्राक्ष ने तिरछा मुस्कुराकर कहा। अब माया को समझ आ रहा था कि दिव्या पूरे दिन से परेशान क्यों थी। माया ने रुद्राक्ष की तरफ खोए हुए अंदाज में देखा और बोली, इसका मतलब ये सब तुम्हें पहले से ही पता था और तुम तभी इतने शांत बैठे थे। शांत तो मैं अभी भी हूँ, क्योंकि मेरे प्लान का एक हिस्सा अभी बाकी है। आपको अकेला रहना होगा, जैसे मेरी मॉम को सबने अकेला छोड़ दिया था, वैसे ही आपके पास आपके केयर करने के लिए कोई नहीं होगा माया खुराना, ना ये धन दौलत और ना ही घर का कोई भी इंसान, रुद्राक्ष ने सर्द अंदाज में कहा। अब तो माया को सच में रुद्राक्ष से डर लगने लगा था। माया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज ये मत कीजिए रुद्राक्ष, ठीक है, हम जानते हैं हमसे गलती हो गई, हम आपकी मदद करेंगे उस ईशानी को यहाँ लाने के लिए और आपकी जिंदगी में दखल नहीं देंगे, आपको चैन से जीने देंगे, प्लीज, लेकिन हमसे हमारी फैमिली मत छीनिए।
बहुत देर से आपको आपकी गलती का एहसास हुआ है, अब कोई फायदा नहीं है। याद है मेरी मॉम भी इसी तरह इस घर को छोड़ने से पहले गिड़गिड़ा रही थी कि उन्हें एक मौका दीजिए, तो आपने कहा था कि देर हो गई है, रुद्राक्ष ने बिना किसी भाव के कहा। भले ही वो उस वक्त बच्चा रहा हो, लेकिन उसे आज भी याद था, दिव्या से शादी करके आने के बाद विक्रांत ने मोक्ष के साथ उसे घर से बाहर निकाल दिया था। रुद्री रुद्राक्ष को भी अपने साथ में ले जाना चाहती थी, लेकिन विक्रांत ने दोनों को मिलने तक नहीं दिया। माया ने रुद्राक्ष के आगे हाथ जोड़कर कहा, हम रुद्री से भी माफी मांगने के लिए तैयार है, ईशानी जिंदा है, वो आएगी तब उससे भी माफी मांग लेंगे, पर प्लीज हमें अकेला मत छोड़िए। बोलते हुए माया ने रुद्राक्ष का हाथ पकड़ लिया। रुद्राक्ष ने माया का हाथ अपने हाथ से अलग किया और वहां से जाने लगा। माया पीछे से रोते हुए चिल्लाकर बोली, प्लीज ऐसा मत कीजिए रुद्राक्ष, हम जानते हैं हमसे बहुत गलतियां हुई हैं और हमें उनका एहसास भी हो रहा है, हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। रुद्राक्ष ने माया की बात को अनसुना कर दिया और वो बाहर जाते हुए अपने मन में बोला, पिछली बार भी आप ईशानी को कहीं और भेजना चाहती थी और उसके साथ बुरा करना चाहती थी, और इस बार भी आपने कुछ ऐसा ही सोचा होगा ना दादी। किसी भी इंसान के इमोशंस, इज्जत, प्यार सब आपको अपने घमंड के आगे छोटे लगते हैं, तो रहिए अपने इसी घमंड में अकेली। रुद्राक्ष वहां से चला गया था। अब उसका अगला मोहरा राहुल मित्तल था। अपनी गाड़ी में आने के बाद राहुल को कॉल करके कहा, मुझे बात को घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं है, सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। याद है ना एक चिप जो ईशानी ने आपके यहाँ से चुराई थी? अच्छा तो तुम्हारी पत्नी ने वो चिप तुम्हें दे दी और तुम उसके जरिए मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो रुद्राक्ष खुराना? जाओ, मुझे नहीं चाहिए वो चिप, राहुल ने गुस्से में जवाब दिया। और आपको दे ही कौन रहा है, बस ये बताना था उसकी एक कॉपी मेरे पास है, रुद्राक्ष ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। मेरा ऑफर कुछ और है मिस्टर मित्तल, मैं तुम्हारी बेटी संजना को हथियार बनाकर तुम पर वार नहीं करना चाहता, वरना ये सबसे आसान तरीका होता। संजना को इन सब में बीच में लेकर मत आओ, राहुल बोला।
ठीक है, तो आपकी पत्नी को बीच में ले आता हूँ जो अब तक जिंदा है, लेकिन संजना को लगता है कि वो मर गई। सुना है आपने उसे पागल करके खुद से दूर कर दिया था, क्योंकि वो आपकी सच्चाई जान गई थी। पुलिस ऑफिसर थी ना वो, और आपको जेल करवाना चाहती थी क्योंकि आपके माफिया के साथ कनेक्शन थे। मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस संजना को उस तक पहुंचा देता हूँ। रुद्राक्ष ने राहुल की पूरी कुंडली निकाल ली थी। राहुल अब तक पूरे घमंड और एटीट्यूड में बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी का जिक्र हुआ वो अपने आप लाइन पर आ गया। राहुल ने गुस्से में लेकिन धीमी आवाज में कहा, आखिर चाहते क्या हो तुम? मुझे नहीं पता तुम्हारी पत्नी ईशानी कहाँ है। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम पता लगा सकते हो, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है तुम्हारे। मुझे ईशानी की लाइफटाइम सिक्योरिटी चाहिए, वरना संजना आज भी मेरी हर बात सुनती है, रुद्राक्ष ने कहा। अच्छा ठीक है, राहुल पैर पटकते हुए बोला और उसने कॉल कट कर दिया। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर संजना उसकी एकमात्र कमजोरी थी। राहुल के पास रुद्राक्ष की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। राहुल ने तुरंत पाकिस्तान आर्मी में अपने जान पहचान वाले ऑफिसर को कॉल किया और उससे कहा, क्या कोई लड़की वहां है जो इंडिया से आई हुई है और छुप कर रह रही है? ऐसी किसी लड़की को अरेस्ट तो नहीं किया गया ना? अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन दोपहर के करीब यहाँ अफवाह उड़ी थी कि एक इंडियन जासूस पाकिस्तान में किसी आर्मी ऑफिसर के घर में छुप कर रह रही हैं। लड़की नहीं मिली, लेकिन मामला काफी हाइप कर रहा है, सामने से उस आदमी ने जवाब दिया। मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर सुरक्षित इंडिया में चाहिए, जितना भी टाइम और पैसा लगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, राहुल ने बिना सोचे समझे कहा। राहुल चाहता तो विक्रांत की तरह ईशानी को खुद के पास बुलाकर रुद्राक्ष को ब्लैकमेल कर सकता था, लेकिन आजकल रुद्राक्ष का नया ही रूप उन सबको देखने को मिल रहा था, जिसके बाद वो सब रुद्राक्ष से दूर रहने का ही सोच रहे थे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, दूसरे सैनिक ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। वो राहुल के बताए हुए काम पर लग गया। दूसरी तरफ रात को जैन जन्नत के पास गया था। उसने ईशानी को अपने कमरे में बंद कर रखा था। ईशानी को देखते ही जैन ने हल्के गुस्से में कहा, ये तो बेवकूफ़ है, लेकिन आपको तो समझदारी दिखानी चाहिए थी ना? इसे कुछ मत कहिए, गलती मेरी भी है जो इसकी बातों में आ गई। माहौल काफ़ी गर्म है, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इंडिया पहुंच भी पाऊंगी, ईशानी ने परेशान स्वर में कहा। जैन को भी अब यही चिंता सता रही थी कि ईशानी को इंडिया भेजना आसान नहीं होगा। वो ईशानी से बात कर रहा था, तभी किसी ने जन्नत के घर का जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। इसी के साथ उन तीनों की दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। जैन काफी सावधानी से रात के वक्त जन्नत के घर आया था। उसे यही लगा था कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा है, लेकिन अब उसके आने के 5 मिनट के अंदर ही किसी का इस तरह दरवाजा खटखटाने का मतलब साफ था कि कोई जैन का पीछा कर रहा था, और अब उनके लिए ईशानी को बचाना आसान नहीं था। बस एक फाइनल पार्ट और फिर कहानी खत्म। आप ज्यादा पार्ट आने से इरिटेट तो नहीं हो रहे हो ना?